Okay, guys, so my name is Faizan and I'm a technology enthusiast.
Aur mera naam Shahwar hai aur main ek laser scientist hu.
And we welcome you to our TechLog podcast number 7. Aaj hamare topic ka jo naam hai wo hai men machine and artificial intelligence aur aaj hamare sath jo hai wo ek guest honge Mohammad Ammar Malik jinhone PF Keats se electronics engineering ke andar bachelor's kiya aur uske baad jo hai wo साउथ कोरिया से चुसोन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर जो है अपना मास्टर्स किया और उसके बाद जो है वो नॉर्वे मूव हो गए और बर्गन यूनिवर्सिटी से जो है वो अभी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर अपना पीएचडी कर रहे हैं. तो अम्मार के पास डायरेक्टली जाएंगे और अम्मार को बोलेंगे कि थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें, कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो उसमें जो है वो ऐड कर दें.
नहीं नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने पॉडकास्ट में मुझे मधु किया. और आपने
क्या किया?
मधु किया. उर्दू में है ना आपकी ऑडियंस?
जी 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 जी.
खैर कभी कभार निकल जाती है इस तरह की. तो मतलब यार सही आपने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे कि मैंने पीएफ कीट से आप लोगों के साथ ही इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद फिर एमएस के लिए मैं साउथ कोरिया चला गया था. वहां से मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया और फिर मैं वहां से एक और मुल्क घूमने के लिए आ गया हूँ पीएचडी करने. नॉर्वे से कर रहा हूँ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में पीएचडी. तो यही मेरी छोटी सी जर्नी थी और अभी मेरा दूसरा साल चल रहा है पीएचडी का.
जबरदस्त. तो अमर, जैसा कि टॉपिक आज का आपको पता है हमारा मशीन लर्निंग से रिलेटेड है और आप जो है उसमें काफी कॉम्पिटेंट है, तो सबसे पहले तो इसी चीज से स्टार्ट कर लेते हैं कि व्हाट इज मशीन लर्निंग. लोगों को पता ही नहीं है और यही एजुकेशन देनी है कि व्हाट इज मशीन लर्निंग और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है. मतलब बेसिक
यार, वैसे तो अगर आप इसको टेक्निकल एस्पेक्ट में देखोगे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रॉड फील्ड बन जाती है और मशीन लर्निंग जो है एक उसके अंदर की स्पेशलाइजेशन है. लेकिन आम आवाम के लिए जो एक जनरल टर्म में एआई और मशीन लर्निंग, ये दोनों टर्म्स अल्टरनेटिवली यूज होती हैं. आसान अल्फाज में अगर आपने किसी को समझाना हो तो आप मशीन को कुछ करना सिखा रहे हो जो काम आप खुद मैनुअली करते थे. मिसाल के तौर पे अगर आप एक रेडी वाले हो और आप कहते हैं अच्छे और बुरे फलों को अलग अलग मैनुअली करते थे, अब अगर आप ये काम एक मशीन को सिखा देते हो कि मशीन अच्छे और बुरे फलों में फर्क करना सीख जाती है और उस बुनियाद पे फिर वो आपको ये काम करके देख बता देती है कि यार ये फल अच्छा है और ये फल बुरा है. तो अब आप इस तरह की आप कोई भी एप्लीकेशन सोच सकते हो जहां पे भी मशीन सीख रही है कुछ करना. तो मेरा ख्याल से यानी नाम से ही वाजे है कि मशीन लर्निंग क्या है.
सही.
अच्छा, यहाँ पे मतलब एक अजीब सी बात ये है कि मशीन सीख रही है तो लेकिन वो मशीन सीखती कैसे है मतलब.
हाँ, अब ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है. मशीन सीखती किस तरीके से है? तो जिस तरह हम इंसान सीखते हैं, हम जब छोटे होते हैं तो हम अपने एक्सपीरियंस से चीजें सीखना, बोलना किस तरह से शुरू करते हैं. तो जिस तरह मेरा अभी तकरीबन 2 साल का बच्चा है, मैं उसको नोट कर रहा होता हूँ कि वो जो फ्लैग होता है वो उसको पाकिस्तान बोलता है. चाहे किसी भी मुल्क का फ्लैग हो वो उसके लिए वो पाकिस्तान है.
लेकिन मोहब्बत
अब वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता जा रहा है कि अच्छा यार ये सारे फ्लैग जो है ये शेप तो फ्लैग की होती है लेकिन अब ये पाकिस्तान नहीं है. अच्छा ये नॉर्वे का फ्लैग है, ये पाकिस्तान का फ्लैग है. इसी तरह कलर्स में डिस्टिंग्विश करना. तो जिस तरह हम ये वक्त के साथ साथ सीखते हैं, इसी तरह मशीन को हम जो डेटा है हमारे पास यानी एक्सपीरियंस से सिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे कि यार ये मिसाल के तौर पर वो ये अगर हम फ्लैग्स को क्लासीफाई करना सिखाएं यार ये पाकिस्तान का फ्लैग होता है, ये इंडिया का फ्लैग है. और जब हम उसको रिपीटेडली दिखाएंगे डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वेरिएशन दिखाएंगे कि यार ये भी पाकिस्तान का फ्लैग है और ये भी पाकिस्तान का फ्लैग है, तो तब आपकी मशीन वो सीख जाएगी. यानी उसके अंदर से वो कुछ पैटर्न्स निकाल लेगी कि अच्छा यार ग्रीन कलर होगा. अब ग्रीन कलर के तो बहुत सारे ममालिक के फ्लैग्स हैं, तो फिर अब वो अच्छा एक उसके अंदर वाइट हिस्सा भी होना चाहिए, एक स्टार होना चाहिए. तो वो मशीन फिर उसके अंदर ये पैटर्न्स ढूंढेगी. मैथमेटिकल उसके अंदर जाहिर है कुछ ऑपरेशंस होंगे और उसके बुनियाद पे फिर वो आपको क्लासिफाई करके चीजें बताना शुरू कर देगी.
एग्जैक्टली. तो कभी चपेड़े खाइए ना अम्मी अब्बू से बचपन में ना, तो वही मशीन लर्निंग, वही लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो मशीनों के अंदर वो इम्प्लीमेंट होता है. तो अम्मार ने यहाँ पर दो बहुत अच्छी बातें की जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूंगा. एक तो अम्मार ने बोला डेटा जो कि अवेलेबल होता है और फिर उसके उस डेटा की बेस पे क्लासिफिकेशन एप्लीकेशन की जाती है। तो हमारे लोग बोलते हैं कि डेटा इज अ न्यू गोल्ड, मतलब ये एक नया नई करेंसी समझ लो एक तरीके से। तो आप इस चीज को किस तरीके से देखते हो, मतलब डेटा की?
नहीं बिल्कुल ऐसा ही है कि अब आप अपने ये गूगल की चीज देख लो, आपकी हर तरह की इंफॉर्मेशन उनके पास जा रही है और फिर वो उस इंफॉर्मेशन की बेस पे ही आपको टारगेट करके एड्स वगैरह दिखाते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट्स जो है इस डाटा को यूज करके कहते हैं मुख्तलिफ चीजों पर यूज कर रही है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि बाकी कैप डेटा जो है यही आगे की आपकी चीजों में हेल्पफुल साबित होगा। जितना ज्यादा डेटा आपके पास होगा आप उतनी अच्छी चीजों को बिल्डअप कर सकेंगे।
सही। तो किस सेंस में मतलब डेटा आपने बोला कि मतलब अब वो डेटा मेरे पास आ गया, फॉर एग्जांपल किसी भी डेटा सेट का, फॉर एग्जांपल जैसे आपने एग्जांपल दी फलों की, सही है, मेरे पास आम, तो अब उनको किस तरीके से मैं डिस्टिंग्विश करूंगा इन चीजों में कि ये मेरा ट्रू डेटा है, ये मेरा फॉल्स डेटा है, क्योंकि फॉल्स डेटा भी तो जनरेट हो सकता है और ट्रू वैल्यू होना बहुत जरूरी है। तो आप किस तरीके से डिस्टिंग्विश करते हो उन चीजों के अंदर कि ये ट्रू रिजल्ट्स हैं, ये ग्राउंड ट्रूथ है हमारा, और उसके अलावा जो है ये हमारा डेटा जिसके ऊपर हमें ट्रेनिंग करवानी है? और
उसके लिए मतलब जिस तरह मशीन लर्निंग में एक चीज यूज होती है जिसे आप कहते हो कि एक्सपर्ट नॉलेज, तो मशीन लर्निंग का ये मतलब नहीं है कि भाई सब काम जो है मशीन ही कर रही होगी। ह्यूमन एक्सपर्ट की वैल्यू आप उस निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो जो ग्राउंड ट्रुथ्स बिल्ड करने में आपको ह्यूमन एक्सपर्ट हेल्प देगा, यानी आप किसी माहिर फल वाले के पास चले जाओगे और उसको बोलोगे कि यार मेरे पास ये इतने सारे फल हैं, जरा इनको आप मुझे अलग अलग करके दे दो। फिर आप उसके एक्सपर्ट नॉलेज पे भरोसा करते हुए अपना एक ग्राउंड ट्रुथ का डाटा सेट बना लोगे और फिर उसकी बेसिस पे आप अपने मॉडल को ट्रेन करोगे।
तो मतलब यहाँ आपने एक पॉइंट मेंशन किया, मैं सॉरी माया शायद पूछना चाह रहा था कुछ लेकिन मैंने इंटरप्ट कर दिया और बीच में शायद मेरा भी कुछ कनेक्शन शायद डिसकनेक्ट हुआ था, मुझे नहीं अंदाजा हुआ, लेकिन वो मैं लास्ट टाइम थोड़ा सा पॉइंट मिस कर गया। लेकिन मुझे एक फॉरन क्वेश्चन आया था दिमाग में कि आप ये बात कह रहे हैं कि जैसे फ्रूट को मैं सॉर्टिंग करता हूँ कि कौन सा अच्छा है फ्रूट और कौन सा खराब है, तो मतलब आप एक नॉर्मल रेडी वाले की जॉब खत्म कर रहे हैं?
नहीं, रेडी वाले की जॉब क्यों खत्म हो रही है? रेडी वाले के लिए तो काम आसान हो जाएगा ना कि वो जो भी मतलब फॉर एग्जांपल फलों की ग्रेडिंग कर सकता है वो पहले मैनुअली करता है। अगर वो कहते हैं लेट्स से कि यही मशीन लर्निंग को यूज करते हुए, बल्कि आजकल तो इतनी आसान ऐप्स आ गई हैं कि मोबाइल के अंदर आप ये टेंसर फ्लो वगैरह को ट्रेन करके कर सकते हो, तो वो अगर ये वाली सॉर्टिंग कर लेगा कि यार ये वाली जो है मेरे फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छे वाले आम है, ये थोड़े से खराब है, थोड़े सस्ते हैं, तो ये सॉर्टिंग उसके
तो उसने एक छोटे को रखा हुआ होता है इस काम पे के लिए ना, मतलब वो कुछ 10 रुपए या 20 रुपए पर घंटे में उस बेचारे छोटे की तो जॉब चले जाएगी। तो मतलब ये किस तरह का एक अजीब सा एक सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है कि चलो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं सबकी बात छोड़ दूं, मैं अपनी बात करूँ कि हर मेरा वो रिसर्च का काम अगर AI या मशीन लर्निंग करने लगेगी या जो मशीन है वो खुद ही लेजर बनाना शुरू हो जाएंगी, पता चला इतनी एफिशिएंट हो गई तो मेरी जॉब तो चली जाएगी। तो
हाँ आप सही कह रहे हो, एक तरह का डायलमा है, लेकिन लेट्स सी कि ऐसा हो जाता है कि एक AI आ गया और वो सारा काम वो कर सकता है, तो फिर उस केस में बीइंग एजुकेटेड पर्सन आप क्या करोगे? आप अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाने की कोशिश करोगे ना कि किसी तरह अब मैं सोसाइटी के अंदर फिट इन हो सकूं, मैं कोई अपनी रेलिवेंट जॉब ढूंढ सकूं, लेट्स सी कि मैं वो रोबोट ऐसा बना सकूं कि जो ये काम कर सके, तो आपको अपनी स्किल सेट को बढ़ाना पड़ेगा फिर।
अच्छा मैं यहाँ पर जो है ना एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि स्किल सेट, देखो जो चीज बन गई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लर्निंग कर रही है उसको भी तो मेंटेन करना है किसी ने स्विच ऑन तो करना ही है ना, मतलब एक बेसिक लेवल के ऊपर एक चीज बता रहा हूँ, तो उसकी मेंटेनेंस, अगर आप रोबोट्स की बात करो तो उनकी मेंटेनेंस, तो एक अगर जॉब जा रही है तो जॉब आ भी रही है, एक और क्लाउड जिसे बोलते हैं इंटरनेट के ऊपर एक ओवरले इंटरनेट, इस तरीके से एक ओवरले ऑफ जॉब्स क्रिएट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद।
अच्छा
बोलते हैं ना कि 2060 के अंदर जो है वो तो कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी और उसके बाद जो है वो लोग बेरोजगार घूमेंगे। एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि आर्ट जो है ना उसको ज्यादा अहमियत मिलेगी आगे जाके, क्योंकि लोगों के पास क्या होगा कि काफी सारी चीजें जो है ऑटोमेट हो चुकी होंगी और लोग आर्ट की तरफ ज्यादा जाएंगे, तो ये एक चीज जो है वो माइंड में रखी जा सकती है कि कोई आर्ट जरूर सिखाना है। उसके अलावा एक और पॉइंट था वो जो फ्रूट सॉर्टिंग के अंदर, कि अभी तक तो हमारा सॉर्टिंग का क्राइटेरिया हमारा ये है कि वो सुनते हैं और
एकदम जैसे वो ब्रेड
उस चीज से, मतलब एक पाकिस्तानी बंदे को उस चीज से मशीन लर्निंग पे शिफ्ट करने के लिए वो क्या स्टेप्स हैं जो तुम समझते हो कि किए जाने चाहिए?
अच्छा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दूं ना माया की इसी वाली बात से। हमारी पिछली पॉडकास्ट में यही सवाल हुआ था, एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट आए हुए थे, तो जिसने वो पॉडकास्ट नहीं देखी है तो प्लीज भाई वो जाके पॉडकास्ट देख ले, तो उसी से रिलेटेड बात है, जाके देखो कंपनी की मशहूरी के लिए। सॉरी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो सुबह सुबह बेकरी पे जाके लोग जो है वो दबा के देखते हैं ना
डबल रोटी को,
ब्रेड को, डबल रोटी को, हाँ मतलब कुछ और नहीं समझ रही है, मतलब डबल रोटी की बात हो रही है, तो वो जो डबल रोटी को दबा के देखते हैं, तो उसके लिए भी तो कुछ किया जा सकता है भाई। वो बड़ा मुश्किल काम है यहाँ जर्मनी में करना, वो गलत समझने लगते है क्या कर रहा है भाई
भाई वो ऐसे देखता है, मैं अगर मैं ऐसे ही, क्योंकि आप बिल्ट इन हमारे अंदर चेक कर लिया, सूंघ के चेक कर लिया, तो हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक जो एक रेडी वाला है जिसके हमने एग्जांपल ली, और उसको उस चीज से हम इस वाली मशीन लर्निंग और न्यू टेक्नोलॉजी किस तरीके से उसको जो है ना वो मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि वो इजिली यूज कर सके, इजिली स्विच कर सके।
यार पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल से बहुत ही पीछे होगा कि वहां पे तो अगर रेडी वाला स्मार्टफोन अच्छे से ऑपरेट कर ले तो मेरे ख्याल से भी पहले तो उसको मतलब एजुकेट करने की बहुत जरूरत है, तो उसके लिए तो करंट सिनेरियो में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एटलीस्ट उसकी उतनी नॉलेज हो कि वो इन चीजों को सही से चला सके, मुख्तलिफ जो है टेक्नोलॉजीज को यूज कर सके, कि अगर फॉर एग्जांपल मोबाइल के अंदर उसके मैंने वो ऐप इंस्टॉल की हुई है तो उस मोबाइल की ऐप को खोल के, और फिर अगर फॉर एग्जांपल कोई उसमें मसला आता है तो उसको डीबग कर सके। तो आई थिंक रेडी वाले लेवल पे तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो बड़ी सुपर मार्केट्स वगैरह हैं जो वहां पे ये चीज एटलीस्ट, क्योंकि वहां पे पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, वहां पे चीजें यूज हो सकती हैं।
मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि अब ये तो मैंने बिल्कुल ही बेसिक ग्राउंड लेवल की एग्जांपल दे दी, जो हम लोगों ने आपने स्टार्ट की थी उसी को मैं लेके चल रहा। तो अब ये हो सकता है कि हमारी जितनी भी सुपर मार्केट है, जैसे इम्तियाज मार्केट हो गई, उसके अंदर जो है इजिली जो है वो इम्प्लीमेंट, आप कस्टमर का ट्रेंड चेक कर सकते हैं इजिली अपने इनकी परचेज से, और ये इससे आपको जो है अपने बिजनेस के अंदर जो है काफी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो ये चीजें जो है वो हो सकती हैं। तो इसको एक लेवल और ऊपर लेकर आ जाते हैं, इसको लेकर आ जाते हैं हम यंग ग्रेजुएट्स के ऊपर, क्योंकि वो अभी निकले ग्रेजुएट हुए और एनर्जी भी है, तो और मैंने देखा कि तुमने एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया था डीप लर्निंग का,
कंपनी की मशहूरी सही से करो ना यार, उनका उनका लिंक हम डाल देंगे, आप जाके उनका लिंक चेक कर सकते हैं।
तो वो एक आइडिया था, मतलब वो क्या स्टेप्स जो यंग ग्रेजुएट्स को इनकरेज करेंगे इस फील्ड की तरफ आने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इमर्जिंग फील्ड है, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा ये काफी अरसे से हम लोगों को नहीं पता,
बिल्कुल हमें नहीं पता, हम काफी पीछे हैं इस चीज में। तो यार उस सिलसिले में यही चीज है कि जो मैं मशीन लर्निंग को जो मैंने वो कोर्स भी स्टार्ट करने की कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाता कि मैं उसको सही से टाइम दे पाऊँ, लेकिन मुझे भी ये लगता है कि ये वो अब स्किल सेट है जो हर बंदे को आना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर फील्ड, के वो किस फील्ड में काम कर रहा है। अगर वो फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस की फील्ड में भी काम कर रहा है तो उसको मशीन लर्निंग का बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो उसको भी ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज है जो यूज हो रही है। तो अब इसको सीखने के लिए तो खैर बहुत सारी कहते हैं चीजें मौजूद हैं, इनकरेज करने के लिए उनके लिए मेरे ख्याल से यही काफी होना चाहिए कि अब दुनिया जो है वो ऑलमोस्ट आपकी हर चीज में मशीन लर्निंग यूज हो रही है, आपके मोबाइल से लेके आपकी जो अगर आप फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन और ये चीजें सारी कुछ जो है मुझे ये स्किल भी आती है तो एक एडवांटेज ही है, आप वो कह सकते हो कि यार अच्छा मैं अपनी इस स्किल को इस फील्ड में भी यूज कर सकता हूँ।
यार मैं इस चीज के अंदर मेरा पॉइंट ये कि क्यूरियोसिटी जो है ना किसी तरीके से क्रिएट की जाए यूथ के अंदर, जो हमारे यंग ग्रेजुएट्स हैं उनके अंदर, कि जब तुम बात कर रहे हो अर्तुगरल की और कल को तुम्हारे पास जो है फेसबुक पे जो तलवारों के ऐड आने शुरू हो गए तो वो ऐसा क्यों हुआ, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक लोग डरते हैं इस चीज से, मैं इसको इनकरेज करता हूँ इन द सेंस के देखो इसको अपने फायदे के लिए यूज करो, क्योंकि मैं फॉर एग्जाम्पल एम्बेडेड सिस्टम्स पे काम करता हूँ और काफी सारे माइक्रो कंट्रोलर सेंसर्स, तो क्या होता है जब भी कोई सेंसर सर्च करता है तो उससे रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन आने शुरू होती है, और जो कि काफी
बिल्कुल हां ऐसा ही है।
ये चीज माइंड में रखते हुए एक क्यूरियोसिटी का एलिमेंट क्रिएट अगर यूथ के अंदर हम कर सकें तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये जो है वो काफी अच्छी चीज होगी इनकरेज करने के लिए. और बाकी तुम्हारा कोर्स भी है और उर्दू के अंदर है तो सच्ची क्या चीज होगी तो इजीली समझ आएगा. जी शेरी
कुछ यार मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था. ये मुझे क्वेश्चन भी आया था पॉडकास्ट के जब ये हमने अनाउंस किया था कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमारे गेस्ट जो है वो मतलब टॉक करेंगे डिस्कस काइंड ऑफ अ डिस्कशन करेंगे. तो वो क्वेश्चन हमारे भाई ये था कि फोर्थ जनरेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है और हम वैसे ही बहुत पीछे हैं जैसे अभी आपने मेंशन किया फैजान ने मेंशन किया कि हम एज अ यूथ जो है हमारी और जो हमारे या मैं उनको ये कहूँ कि जो डेवलप्ड लोग हैं इंडस्ट्रीज के वो भी पीछे हैं वो इन चीज़ों को इतना नहीं समझ रहे. लेकिन एक अजीब सा नोशन क्रिएट हो रहा है कि जैसे डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है. देखे हम इतनी स्किल्स की बात कर रहे हैं हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं स्किल्स की बात करते हैं डिफरेंट फील्ड्स की बात करते हैं लेकिन उसके लिए आप क्या आप मतलब इस बारे में क्या सोचते हैं कि इस चीज को कैसे एलिमिनेट किया जाए कि भाई डिग्री जरूरी है. मतलब ऐसी बात नहीं है कि तुम बगैर डिग्री के मतलब तुम सिर्फ स्किल्स सीख के ही आगे चले जाओगे. तो आप इस बारे में क्या कहते हैं?
इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग.
यार मैं तो एग्री करता हूँ आपकी इस बात से लेकिन आपको बहुत सारे लोग इस तरह के मिल जाएंगे जो आपकी बात से एग्री नहीं करेंगे. खासतौर पर आजकल ये जो वो हाथ खड़ा कर रहा है वो भी एग्री नहीं करेगा कि वो लोग भी यही बोलेंगे कि यार डिग्री जरूरी नहीं है. तो अब ये इसमें आप ये कह सकते हो कि भाई हर किसी की राय डिफरेंट हो सकती है लेकिन मेरा ख्याल से भी डिग्री सिर्फ इस सेंस में नहीं कि वो एक कागज का टुकड़ा नहीं है. आप वो जो हम जिस जो चार साल गुजारे हैं हमने हम एक प्रोसेस से गुजरे हैं.
Exactly.
मतलब वो एक तरफ समझो वो देखा है कि जब प्रोजेक्ट से फॉर एग्जाम्पल हम प्रोजेक्ट डिसाइड कर लेते थे यार हमने इस कोर्स का ये प्रोजेक्ट बनाना है फिर हमें कोई आइडिया नहीं होता था यार हम कैसे बनाएंगे बट इवेंचुअली हम उसे पुल ऑफ कर लेते थे किसी तरीके से बनाते थे. तो उस प्रोसेस से वो जो लर्निंग कर्व हमारा होता था तो मेरा ख्याल से वो काफी ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट होता है. अगर आप खुद से कोई स्किल सेट सीख रहे हो तो शायद आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो. अब तो एटलीस्ट मैं नहीं हूँ उस तरह का मोटिवेटेड कि मैं कोई स्किल अपने ओन पे जो हूँ इसमें सीख के इतना एक्सपर्ट बन जाऊं. तो आई थिंक ये प्रोसेस से गुजरना जो है ना ये भी उसका पार्ट होता है. फिर उसके अंदर और चीजों से भी आप गुजरते हो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज तो नहीं थे उसमें हमारे मतलब ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज भी थे मतलब इंग्लिश जो हमारी कम्युनिकेशन की चीजें हैं हमने ये चीजें भी सीखी हैं. तो आई थिंक डिग्री की वैल्यू तो मेंटेन रहेगी उसको आप नहीं एलिमिनेट कर सकते.
सही तो मैं अमार की बात को ही सेकंड करूंगा कि डिग्री की अपनी जगह पे अहमियत है क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं मैं कम्प्लीटली डिफरेंट मेरी पर्सनैलिटी थी और जब मैं चार साल बाद वहां से निकला तो मैं कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन था. यूनिवर्सिटी जाके डिग्री लेना सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री या एम्बेडेड सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर्स पढ़ना ही नहीं होता लेकिन उसके अंदर जो है आप शेप करते हैं आपको प्रेशर पड़ता है प्रोजेक्ट्स का सही है डेडलाइंस होती है आपकी उनको आप मीट करना सीखते हैं सही है. और फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ हमारे साथ भी हमारे बैच के साथ भी कि काफी जैसे बोलते हैं ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर तो वो एक अलग ही सिनेरियो था. अहमियत तो हम खत्म नहीं कर सकते लेकिन स्किल जो है इस वक्त जो मतलब जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं दे डोंट केयर अबाउट योर डिग्रीज. ओके दे डोंट आस्क अबाउट योर डिग्रीज दे डोंट केयर अबाउट योर CGPA एनीथिंग सही है. वो उनको चाहिए कि आपको C++ के अंदर आपकी कॉम्पिटेंसी कितनी है आपकी पाइथन के अंदर कॉम्पिटेंसी कितनी है आपने 5 साल पाइथन पे काम किया हुआ है इरिस्पेक्टिव आपके पास डिग्री है या नहीं है सही है. आप प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हो दैट्स इट. तो एक चीज ये और एक जो हमारा वो लड़का यार अपना क्या नाम है एलन मस्क सही है. एलन मस्क बोलता है भाई
नहीं नहीं खाला का लड़का
टोटली जो है वो चीजें स्किल बेस्ड है और बच्चे जो है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी पार्टी करने जाते हैं जाओ एंजॉय करो. सही
यार एक चीज है मैं यहाँ शायद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ आप दोनों से लेकिन मतलब अमार भाई ने भी थोड़ी सी इस बात को हाईलाइट किया शायद मैंने उस तरह से उसको प्रिसीव नहीं किया अमार भाई क्लियर कर देंगे अभी. लेकिन डिग्री की वैल्यू मेरे लिहाज से इस तरह है कि यार देखो आप स्किल सेट अपना अक्वायर कर लोगे सही है लेकिन अगर आपकी सोच छोटी ही है गंदी सोच है आपकी सही है तो आप उस सोच को साफ सुथरा नहीं बना सकते. मतलब आप 4 साल की डिग्री में बेसिकली नॉलेज इतनी नहीं हासिल करते जितना अपने आप को एजुकेट करते हो. अब यहाँ आप डिफरेंस चेक कर ले एजुकेशन और नॉलेज का कितना फर्क होता है. आप एक मेंटेलिटी क्रिएट करते हो. फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी एक एग्जांपल आती है हमारे सामने के अभी जितनी भी अगर मैं स्टैटिस्टिकली देखूं अभी जितनी बड़ी कंपनीज के CEOs हैं या ओनर्स हैं सही है वो जितनी ये सारी बातें कर रहे हैं कि हमें स्किलफुल पर्सन चाहिए और डिग्री वाला नहीं चाहिए. अगर मैं उनका बैकड्रॉप देखूं तो उनकी डिग्रीज भी इंजीनियरिंग में है نو اوفینس کہ میں دوسری ڈگری والوں کو افینڈڈ کر رہا ہوں, لیکن آپ عمار بھائی آپ اے آئی میں کام کر رہے ہیں, مشین لرننگ میں کام کر رہے ہیں, لیکن جو ہے وہ آپ سوری یہ بیچ میں کمنٹ آ گیا, میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں, لیکن عمار بھائی آپ نے بھی انجینئرنگ کی ہے, صحیح ہے, مطلب آپ نے چار سال کھپائے ہیں اپنے
بالکل
اس مینٹیلٹی کو کریٹ کرنے کے لیے, اور اسی طرح فیضان کی مثال بھی ہے, فیضان کو میں نے جتنا بوم کرتے ہوئے دیکھا انجینئرنگ کی وجہ سے, فار سپوز انجینئرنگ تو یہ الیکٹرانکس میں کرنے گیا تھا لیکن یہ روبوٹکس میں گھسا رہتا تھا, وہ ایک الگ بات ہے کیوں مجھے نہیں پتا لیکن وہ خود بتائے گا, تو وہی روبوٹکس کا ایکسپیرینس میرے خیال میں اس کو ہیلپ آؤٹ کیا, اور وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اس چار سالوں کے اندر ہی اتنی ہیلپ آؤٹ ہوئی کہ یہ آج یہاں پہنچا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر میں جیسے میرے پاس کوشچن آیا میں اس کو فینس نہیں کر رہا جس نے کوشچن کیا یا پوائنٹ ریز کیا, اور وہ صرف وہ اکیلا لڑکا نہیں ہے, سوری میری بات تھوڑی سی شاید یہاں لمبی ہو رہی ہے لیکن میں یہ کریٹ کرنا چاہ رہا تھا بات کہ مطلب اس طرح کیسے کریٹ کریں گے کہ دیکھو بھائی ڈیوائڈ نہیں ہے, جیسے مایا نے مینشن کی ڈیوائڈ نہیں ہے کہ اگر آپ اسکلس اکوائر کرنے جا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈگری نہ کرو, اس پیس اتنا تیز ہو چکا ہے ریسرچ کا کہ آپ کو ڈگری بھی کرنی ہے مینٹیلٹی بھی کریٹ کرنی ہے اور اس کے اوپر چیری آن ٹاپ آپ نے اسکلس کریٹ کرنی ہے,
سر میں بولنا نہیں چاہتا لیکن وہ آزاد چائے والا نہیں بننا ٹوٹلی,
ہاں وہ تو عجیب ہی مینٹیلٹی ہے مجھے نہیں سمجھ آیا,
اچھا یار نہیں وہ بھی عجیب مینٹیلٹی نہیں ہے یار, اگر آپ مطلب اگر میں اس کے اینگل سے دیکھوں اگر وہ جو چیز کہہ رہا ہے تو ڈگری بھی آپ کو اسکل سیکھنے سے تو نہیں روک رہی نا,
بالکل
اگر آپ نے فار ایگزامپل الیکٹرانکس کر رہا ہے کوئی بندہ اور آپ کوئی تھرڈ اسکل سیکھنا چاہتا ہے تو آپ کو کوئی روک تو نہیں رہا آپ کو وہ اسکل سیکھنے کا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ وہ ثابت ہوگی تو آپ وہ اسکل سیکھ لو, اور لیکن وہ جو آپ کو جس نے سوال کیا ہے اس کے اسپیکٹ سے یہ چیز دیکھنا ویسے ضروری ہے اگر ہم ان دوسرے اینگل سے بھی دیکھیں کہ شاید جاب کے لیے واقعی ڈگری کی امپورٹینس نہ ہو, اگر میں کسی پرٹیکولر جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہوں وہاں پہ اگر لیٹس سے کہ میرا پورٹ فولیو اتنا اچھا ہے میں نے اتنے سارے پروجیکٹس آلریڈی کیے ہوئے ہیں وداؤٹ ہیونگ اے پراپر ڈگری, تو ہو سکتا ہے مجھے وہ کمپنی پریفر کرے گی ایز کمپیئر ٹو اے کینڈیڈیٹ کے جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن اس طرح کا پورٹ فولیو نہ ہو, تو جاب کے لیے بے شک ٹھیک ہے لیکن جس طرح کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈگری کی اور امپورٹینس بھی ہے, صرف جاب لینا ہی ڈگری کی امپورٹینس نہیں ہے.
ایگزیکٹلی تو عمار میں اسی چیز کو لے کر آؤں گا, دیکھو اسکل سے چلتے ہیں اور اسکل سے جو کہ شیری نے انڈسٹری 4.0 کی بات کی, اب وہ ان اسکلس کے اندر سے مشین لرننگ ایک میجر اسکل ہے جو آپ کو آنی چاہیے انڈسٹری 4.0 کے لیے, تو اسی بات سے دوبارہ واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں, اب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹیکنالوجی اڈاپشن کے اندر نا بہت ٹائم لگا دیتے ہیں جس سب نے بھی بات کی, تو پاکستان کے اندر بھی مشین لرننگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اب اس کی اڈاپشن کہ کیا 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 طریقہ کار سجیسٹ کریں گے ہمارے اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ
یار, وہ جنید اکرم کو اگر تم لوگوں نے اس کا کہتے ہیں ریسنٹ اگر وہ دیکھا ہو پوڈ کاسٹ اس میں وہ ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ جو ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ وہ پرانا والا والیٹ ہے
بومر مینٹیلٹی,
ہاں تو وہ جو ہے نا کہ وہ بہت مشکل ہے, مطلب میں نے کتنے لڑکوں کو دیکھا ہے جنہوں نے بہت اچھے اچھے پروجیکٹس بنائے ہیں اپنے بیچلرز وغیرہ میں اور جو کہ باقاعدہ امپلیمنٹ ہو سکتے تھے لیکن جو ہے ہماری جو بھی یہ ہے اعلیٰ حکام وہ اس میں انٹرسٹ ہی شو نہیں کرتے, ان کو لگتا ہے یار یہ کیا چیز ہے, تو اگر آپ مطلب اس طرح کے پروجیکٹس دیکھو یعنی آپ یار پاکستان میں کتنی الگ یونیورسٹیز ہیں اور ان کے کچھ تو پروجیکٹ ہر یونیورسٹی کا ایک ایک پروجیکٹ تو کم از کم ایسا ہوگا جس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یار یہ
چیز آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ جو ہے امپلیمنٹ کرتا ہے,
ہاں اور مطلب اس کو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہو اپنی مطلب اپنے انڈسٹری میں, فار ایگزامپل آپ جو ہے کتنے لوگوں نے تو آپ کے الیکشنز کو کے سسٹم کو کہتے ہیں الیکٹرانک کرنے کے لیے کیا ہوا ہے لیکن ہم لوگ وہی بات ہے موو ہی نہیں کرنا چاہ رہے فار سم ریزن, تو ان لوگوں کو کسی طرح ایجوکیٹ کرانا ہے کہ یار اگر ہمیں نئی دنیا میں جانا ہے تو بھائی وہی والی بات ہے کہ ہاتھ جوڑ کے, کیونکہ آگے والی لائف جو ہے وہ ہماری ہے, وہ لوگ تو بس مطلب اب دیکھا جائے کہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر ان کا دور اب گزر گیا تو ہم یہ مشکل کریٹ کریں گے اگر وہ اس ٹیکنالوجی کو اپڈیٹ نہیں کریں گے,
ایگزیکٹلی تو ہم اسی لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے اور امبام عمار ہمارے ساتھ ہے اور مشین لرننگ کی ایکسپرٹیز بھی, تو عمار سے ایک ٹیسٹ کیس دے کے پوچھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ پاکستان میں بکرا عید آتی ہے تو فارمنگ ہوتی ہے اور ان کے جو اینیملز ہیں وہ کافی جو ہے وہ مہنگے ہوتے ہیں, تو
اینیمل
پروڈکٹیویٹی ان کی بریڈ اس کے اوپر جو ہے وہ उसके ऊपर कोई काम किया जा सकता है मशीन लर्निंग लगा के?
भाई सीधा सीधा बोलो यार, तुम बकरीद के जानवरों की बात कर रहे हो यार, तुम हद हो गए, एनिमल्स मतलब हद हो गई यार।
सही सही,
लाइव में हो जाता है ऐसा।
हाँ
तो यार गाने सुन रहा हूं रिसेंटली, मैं डॉक्यूमेंट्री देख, डॉक्यूमेंट्री है या सीरीज कह लो, मैं देख रहा था, उसके अंदर ही मैंने ये चीज देखी थी, ये फार्मिंग से रिलेटेड ही, मतलब इत्तेफाक से अब आपने बात किया तो, कि जो है उसमें कुछ कर इस तरह से रहते कि एक उन्होंने कैमरा लगाया हुआ है जहां पे जानवर पानी पीने आता है, उस पर एक कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा तरह से हर जो भी जानवर पानी पीने आता है उसकी तस्वीर खींच लेता है, उसकी मदद से उन्होंने एक एल्गोरिथम डिजाइन कर लिया जो कि उन जानवरों में डिस्टिंग्विश कर सकेगा, क्योंकि अब बकरे हमें तो सारे एक जैसे लगेंगे ना, सही है थोड़ा बहुत कलर डिफरेंट होगा, लेकिन अगर आपके पास हजारों बकरे हैं, आप हजारों बकरे पाले हैं तो आप हजारों के नाम तो नहीं रख सकते, तो उन्होंने इस तरह का कहते हैं सिस्टम बनाया हुआ कि भाई अब फिर जब उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया, अब उन्होंने एक तरह से उसको उसके अंदर एक ट्रैकर भी लगा लिया, कैमरे के थ्रू ट्रैक करते रहेंगे कि यार फलां जो बकरा है वो आज पानी पीने नहीं आया या वो खाना नहीं खा रहा, तो उसको उनको इस चीज से आइडिया हो जाएगा, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट बकरा, यानी उसकी या तो तबीयत खराब है या उसको कोई मसला है, तो वो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और फॉर एग्जांपल कोई जख्मी है या कुछ है तो आप उस चीज को भी वो कर सकते हो, तो ये एक छोटा सा कहते हैं एक एग्जांपल आप कह सकते हो, बट नॉट लिमिटेड टू दिस, मतलब इसको किसी भी जगह इंडस्ट्री हमारे यहाँ जो दूसरी एग्रीकल्चर वाली फार्मिंग है उस वहां पे अप्लाई हो सकता है, कि अभी रिसेंटली मैंने देखा था, पता नहीं अब उसको किस सतह पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कि किसी ने प्रोजेक्ट बनाया था कि चावल की क्वांटिटी सॉरी क्वालिटी रिकग्नाइज करने के लिए, हाँ तो अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए आपकी जो है इंडस्ट्री में तो उसमें तो आपका फायदा ही है, और कहते हैं काफी इंटरेस्टिंग चीज है,
तो इससे अच्छी तो कोई चीज हो नहीं सकती कि आप उसकी क्या बोलते हैं हमारी लोकल प्रोडक्ट जो है वो चलेगी, हमें बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगी, सबसे बड़ी बात है कॉस्ट बचेगी और लोकल टैलेंट प्रमोट होगा, तो अच्छा। ये चीज है। उसके अलावा मैं एक बात पूछा था, बकरों को देख क्यों रहा मान
मैं भी ये पूछने वाला था
वो मैंने बताया ना कि जिस तरह उस केस के अंदर तो देखो वो लोग ये चाह रहे हैं कि यार हम लोगों को पता चलता रहे, और वो लोग तो एक स्टेप आगे जा रहे थे, वो तो एक्सप्रेशन रिकग्निशन भी कर रहे थे, हम लोग इंसानों के एक्सप्रेशन रिकग्निशन नहीं कर रहे, ये जानवर खुश है या उदास है या तकलीफ में है, उन्होंने एक तरह से क्लासेस बनाई हुई थी, और वो जब पानी पीने आता था तो वो एक तरह से उसकी पिक्चर कैप्चर करके उनका एक एल्गोरिथम पैरेलल में एक लैपटॉप पर चल रहा होता था जो उनको ये चीजें इन्फॉर्मेशन दे रहा होता था कि इस पर्टिकुलर जानवर की इस टाइम पे ये कंडीशन है, तो फिर उस कंडीशन की बेस पे आप कहते हैं एनालाइज कर सकते हो कि अगर कोई जानवर जो खुश होगा वो ज्यादा अच्छी आपको प्रोड्यूस करेगा, और जो जानवर बीमार है या तो वो जाहिर है हो सकता है दूध भी वो उतना अच्छा ना दे,
टक्कर भी मारेगा वो
अच्छा इसी से रिलेटेड एक आइडिया है, अभी आपने गवर्नमेंट की बात की थी, तो गवर्नमेंट के सेंस में अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखता, कराची की अगर मैं एग्जांपल लूं, क्योंकि मुझे बाकी जगहों का इतना नहीं पता, कैटल फार्मिंग होती है, बकरीद आती है, और बहुत लाखों के जानवर बिकते हैं, मतलब वो एक जानवर पे पता नहीं कितना इन्वेस्टमेंट होता है, सब कुछ होता है, अगर कोई स्टूडेंट पाकिस्तान में बैचलर्स लेवल का, उसको एआई आती है या थोड़ी सी भी कमांड है, और वो इस चीज़ को प्रॉपरली एज अ बिजनेस इंप्लीमेंट करे, वो पूरे कैटल के ऊपर जो है वो एक कैमरा लगा दे, डेटा उसको ऑस्ट्रेलियन फार्मिंग से मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के डजन्स ऑफ रिसर्च पेपर्स जो है वो फार्मिंग पे पब्लिश होते हैं, उधर से वो डेटा उठा सकता है, उधर से उठाने के बाद वो फार्मिंग को डबल कर सकता है, मतलब जिस लेवल पे अभी हो रही है उससे उसका जो लेवल है वो डबल किया जा सकता है, और उतना ही ज्यादा महंगा जानवर बिकेगा अभी फिर, और उतना ही ज्यादा उसकी डिमांड भी होगी।
सही सही,
इसी से रिलेटेड एक आइडिया मेरे जहन में मतलब इस तरीके से आया कि मैं अभी रिसेंटली सुन रहा था, आई डोंट नो बेल्जियम है या कौन सी जगह है, वहां पे उन्होंने बोला कि उनके पास जो फार्मिंग की लैंड है वो कम से कम होती जा रही है, क्योंकि मतलब अब आबादी बढ़ रही है तो फार्मिंग की लैंड कम हो रही है, तो अब वो उन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं कि कम से कम जगह में अपनी यील्ड कैसे बढ़ाएं, यानी कम जगह, अब फिर वो उसको वही जाहिर सी बात है कि उसमें फिर डिफरेंट स्किल सेट्स आएंगे जिसमें से एआई एक पार्ट होगा उसका, कि भाई आप उसके थ्रू भी कहते हैं कि यार मैं कम से कम किस तरह का फॉर एग्जांपल बीज यूज करूं कि जो मुझे ज्यादा अच्छी यील्ड देगा, या बीज जो खराब है मैं उसको यूज ही ना करूं, किस तरह से हेल्दी रखूं प्लांट्स को, तो ये भी एक फैक्टर उसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। फार्मिंग के
सिर्फ सिर्फ छोटी जगह पे ही नहीं, इंडोर फार्मिंग का बड़ा ट्रेंड आ रहा है, इंडोर फार्मिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड आ रहा है और ये इजीली पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो सकता है, लोग अपने क्या बोलते हैं घरों में लगा सकते हैं। वैसे मतलब इतने खैर अगर देखा जाए तो डेंसिटी वाइज कराची तो इतना मतलब सूटेबल नहीं है, लेकिन ये जहाँ पर लोग घर बड़े हैं वो इंडोर फार्मिंग कर सकते हैं, छतों के ऊपर फार्मिंग कर सकते हैं, तो इसका बहुत ट्रेंड आ रहा है और यहाँ पर सेंसर्स जो है वो बड़े काम में आएंगे और उन सेंसर्स के जरिए आप जो है वो ट्रेन करवा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड्स हैं हमारे ग्रोइंग के और उसके हिसाब से जो है वो आप डिसीजन ले सकते हैं। तो यही यही मशीन लर्निंग है, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आपने पानी कब देना है और क्या बोलते हैं किस मौसम के हिसाब से, क्या वो पैरामीटर्स है ह्यूमिडिटी के और टेम्परेचर के, क्या आपने पानी हिसाब से देना है और स्प्रे मक्खी मार स्प्रे कब करना है, सुन्नी मार स्प्रे कब करना है, ये सब चीजें एग्जांपल है और इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। हम लोग ये नहीं बोलते कि आउट ऑफ द ब्लू मतलब कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई नया आइडिया लेकर आ जाए, आइडियाज हैं उन्हें रेप्लीकेट करना है अपने पैरामीटर्स देखते हुए, तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोल सकते हैं, ला सकते हैं हम पाकिस्तान में, कोई इसमें नई इनोवेशन नहीं है, सिर्फ आपने इम्प्लीमेंट करना है, रेप्लीकेट करनी है चीज़ों को। और एक और एग्जांपल शेरी जो दे रहा था कि एआई उस लेवल तक पहुंच गई है कि वो आपके न्यूट्रिशन जो है वो प्रेडिक्ट कर सकती है, अच्छा, और कल आपको क्या खाना चाहिए, हर रोजाना गोश्त नहीं खाना, हर रोजाना आपने ब्रोकली नहीं खानी, आपने सब्जी टिंडे रोजाना नहीं खाने, आपने
खीरा नहीं खाना,
खीरा खाना, सही है
नहीं, वो असल में ये इस तरह से हुआ था कि जब अमार भाई का मुझे पता लगा कि यार कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, और मैं थोड़ा सा ना वो भाई मतलब हमें कंप्यूटेशनल का नहीं पता, वो बायोस के साथ तो उससे रिलेटेड एक अमार भाई ने भी एक चीज मेंशन की थी, तो मतलब आप को किस तरह इसको डिफाइन करेंगे अगर आपसे मैं पूछूंगी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या मतलब मशीन लर्निंग इन मेडिसिन और न्यूट्रिशन?
मैं अगर सिर्फ न्यूट्रिशन का पूछ रहे हो तो आई थिंक ये तो आपको इम्प्लीमेंट होती हुई बाकी जगहों पे नजर आ जाएंगी, इस तरह के डिवाइसेस जो हैं, उस दिन मेरी आपसे डिस्कशन हो रही थी, जब इस तरह के डिवाइसेस मौजूद हैं जो कि आप यानी अब इस तरह के वो ऑलरेडी ट्रेंड है, ऑब्वियसली उन्होंने उसको ट्रेंड कर दिया, वो आपका कहते हैं डाटा लेंगी और उसकी बुनियाद पर कहते हैं वो प्रिडिक्ट कर देंगी कि आप में फला चीज की कमी है, आयोडीन की कमी है या पोलियो की,
आयोडीन मिला नमक
तो आपको ये चीज खाना है, तो इस तरह से तो हो रहा है। बाकी अगर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का सवाल कर रहे हो तो वो फिर एक अलग सवाल है।
अच्छा, अगर मैं आपसे जैसे उस दिन वो मैं डिवाइस का नाम मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, लूमिन नाम था, तो वो बनाई बॉडी बिल्डर्स के लिए और फिटनेस एंथुजियास्ट के लिए और स्पोर्ट पर्सनैलिटीज के लिए, के मतलब वो ब्रीथ को सेंसिंग करती है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल सेंसर्स लगे हुए हैं, सॉरी अगर मैं बहुत मुश्किल बात बोल रहा हूँ तो और फिर वो डेटा से मैच करती है, उस पे एआई आपको बताती है कि कल क्या परफॉर्मेंस थी, आज क्या परफॉर्मेंस है, तो वो जो बेचारे बारों पे इश्तिहार लगे होते हैं ना कमजोरी वाले, वो खत्म हो जाएंगे इसके बाद
होपफुली
ये खत्म करनी है।
अच्छा, आप जस्ट तक हम लोग थोड़ा सा एंड की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब आप कंप्यूटर बायोलॉजी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी वही है कि आप की जो बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस में किस तरीके से आप कंप्यूटर को यूज कर सकते हो या कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजीज को या टेक्निक्स को यूज कर सकते हो, तो वो है और उसकी कहते हैं नातादाद मिसालें मौजूद हैं, बहुत स्कोप मौजूद है मेडिकल फील्ड के अंदर। जब मैं खुद आया हूं तो मुझे पता लगा कि इसके अंदर बहुत सारा स्कोप है जहां पे ये मशीन लर्निंग और एआई बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रही है। मिसाल के तौर पे एक मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि कुछ अरसा पहले तक जब आपको सर्जरी करनी होती थी तो बाकायदा डॉक्टर आपके जो है उसके ऊपर एक कागज रख के पहले वो डायग्राम सी बनाता था आपकी कमीज के ऊपर, यार यहाँ यहाँ जगह से मैंने कट लगाना है और इस तरीके से वो सर्जरी परफॉर्म होगी। अब आपके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है कि आपका वो कैमरा बिल्कुल सही उसके ऊपर एग्जैक्टली अलाइन होगा, और ये सारा पीछे एआई के थ्रू ही हो रहा है, अलाइन होगा, आपको पूरी आउटलाइन बना के देगा कि यार ये इस जगह से आपको कट लगाना है, और देन वो तो अब आप सोचो कि डॉक्टर का काम कितना आसान हो गया, क्योंकि उसका असल काम तो कट लगाना है, लेकिन उसका एडिशनल कितना टाइम जाया हो रहा था, मतलब जाया हो रहा था उसकी वो दिमाग के यार मैं कहीं गलत ना बना दूं या कुछ गलत ना, तो उसकी पूरी एनर्जी अब सिर्फ इस चीज पे फोकस होगी कि यार मैंने जो है ये यहाँ से कट लगाना है।
अच्छा, अमर मैं यहाँ पर कुछ चीजें ऐड करूंगा, सिर्फ ये तो तुमने फिजिकल चीजों की बात की कट लगाना है और ये, अगर तुम कैंसर की एग्जांपल ले लो, कैंसर की डिफरेंट टाइप्स हैं, सही है, उनको किस तरीके से क्लासिफाई करना है, गलत क्लासिफाई कर दिया बंदा मर जाएगा, सही है। तो इसकी इतनी इतनी इंपॉर्टेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। उसके अलावा लोगों को जो है वो फेफड़ों के मसले होते हैं, सही है, तो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। और टीबीसी एक उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि भाई अगर वो जरा सा भी रह जाता फिर वो दोबारा ग्रो कर जाती है। तो किस तरीके से वो अब डेटा आपके पास है, वो कौन से एल्गोरिथम्स, वो कौन से तरीके ईजाद किए जाएं जिनके जरिए आप अच्छी से अच्छी जो है वो प्रिडिक्शन कर सके, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और इसी चीज के लिए जो है हमें मोटिवेट करना है लोगों को। तो ये अच्छा अमर, दो चीजें मैं लाजमी पूछना चाहूंगा। एक तो अप्रोचेस, तुम देखो तुम्हारा जो है ना स्पेक्ट्रम काफी ब्रॉड इन टर्म्स ऑफ कंट्रीज, के भाई तुम डिफरेंट डिफरेंट जगहों के कल्चर्स भी देखे, और साउथ कोरिया के अंदर भी तुमने पढ़ा, वहाँ का कल्चर देखा, एजुकेशन सिस्टम देखा, और अब नॉर्वे में आए, यहाँ का कल्चर तुम देख रहे हो और एजुकेशन सिस्टम देख रहे हो, उनकी यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री की कोलेबोरेशन देख रहे हो, और इनके हॉस्पिटल्स देख रहे हो, उनके एजुकेशन सिस्टम देख रहे हो, तुम्हें क्या क्या डिफरेंस लगता है तीनों जगहों पर, पाकिस्तान में, नॉर्वे में और साउथ कोरिया के अंदर, और वो क्या चीजें जो हम लैग करते हैं पाकिस्तान में? वैसे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन कुछ
पाकिस्तान तो अनफॉर्चुनेटली मतलब हम बहुत ही पीछे, मतलब उनको तो मैं कंपेयर करना ही मतलब ज्यादती हो जाएगी। अगर मैं कंपेयर करूँ उसको साउथ कोरिया और नॉर्वे से तो वो तो बहुत ज्यादती हो जाएगी। साउथ कोरिया की अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो साउथ कोरिया में जो लोग तुम लोगों ने देखी भी होंगी, कहते हैं डिफरेंट न्यूज वगैरह भी, वो मशीनी टाइप के लोग हैं। मतलब वो एक जो है बस काम में लगे रहेंगे, वो सारी सारी रात अपनी लैब्स में बैठे रहते हैं, और उनके लिए ये काम बहुत नॉर्मल है। मतलब वो उनको ये नहीं लगता कि अब उनके साथ कुछ ज्यादती हो रही है, वो उनके लिए बहुत नॉर्मल है, और वो फिर आपसे भी इसी तरह का काम एक्सपेक्ट करते हैं। तो उनकी जो है ट्रेंड इस तरह का है। लेकिन यह है कि एक तो उन्होंने अपनी जबान में रहते हुए, मुझे सबसे हैरत अंगेज चीज ये लगती है कि 90% लोगों को वहां पर बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती, उसके बावजूद उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है कि अपनी जबान में रहते हुए हर चीज उन्होंने जो है वहां पे इम्प्लीमेंट की हुई है, और उनको जरूरत ही नहीं है इंग्लिश सीखने की। तो एक ये मैंने मतलब वहां का कल्चर देखा जो मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग और वर्काहोलिक जिसे कहते हैं, वो वाला का कल्चर है। उसके अलावा नॉर्वे अगर मैं बात करूं तो ये काफी रिलैक्स्ड, बहुत रिलैक्स माहौल, मतलब चिल माहौल वाला सीन होता है। यानी इनकी वो मेंटेलिटी है कि यार बंदे को हम जितना रिलैक्स रखेंगे और बंदे को जितना हम फ्रीडम देंगे ना, वो उतना अच्छा आउटपुट देगा, बजाय इसके कि हम उसको स्ट्रेस दें और उसको ये डेडलाइंस का प्रेशर ये चीजें दें, उसके बजाय से हम उसको उसके ओन पे छोड़ें और उसकी वेलफेयर के ऊपर अगर ध्यान दें तो वो हमें ज्यादा अच्छा कहते हैं आउटपुट देगा। और सो फार इनकी जो ये मेंटेलिटी है उसने वर्कआउट किया है, तो इसी वजह से वो इसको लेके चलते हैं।
सही।
हाँ, पाकिस्तान की बात थी, पाकिस्तान में कैसे हो सकता है कुछ चीजें जो इम्प्लीमेंट हो सकती है, वो जिस तरह मैं अगर काम कर रहा हूँ यहाँ पे तो हर यूनिवर्सिटी का एक हॉस्पिटल के साथ लिंक होता है। मैं क्या में था वहां भी एक मतलब यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्पिटल होता है। अब वो जाहिर है वहां पे फिर जब आपके पास हॉस्पिटल का एक्सेस है तो आपके पास बहुत सारा डाटा आ जाता है, तो के लिए तो डाटा जो है वो बहुत जरूरी है आपके लिए। पाकिस्तान में मेरी नजर में नहीं है क्योंकि इस तरह की कोई यूनिवर्सिटीज, आई डोंट नो, जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हमारे वहाँ जो है ये आगा खान हो गई है, ये तो ये मेडिकल यूनिवर्सिटीज ही है। इनके अंदर इस तरह नहीं है कि भाई कोई कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है जो जहाँ पे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो अगर ये इस तरह यूनिवर्सिटीज का आपस में कोलैबोरेशन हो कि यार उनका हॉस्पिटल्स तक एक्सेस हो और हॉस्पिटल खुद अप्रोच करें, यार मतलब अच्छी अच्छी चीज है, वो बोलें कि यार हमें फॉर एग्जांपल अपना ये चीज हम चाहते हैं कि यार हमारा इम्प्रूव हो जाए, ये काम हमें इतनी देर लगती है करने में, कोई जो है हमें फला डिवाइस बना के दे दे जो हमें हमारा ये काम कर दे, तो आई थिंक हमारे यहाँ कैपेबिलिटी है, टैलेंट बहुत है, तो यानी आप उनको कोई काम दे दोगे, काम वो आपको निकाल के दे देंगे हमारे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह।
जबरदस्त, ये तो टैलेंट है। ऐड करना चाहोगे फिर मैं उसको एंड की तरफ लेके जाऊंगा।
हाँ, मैं बस ये मैं बड़ा मतलब मुझे काफी चीजें सीखने को मिली, और यही है कि यार मतलब लोगों को अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो हमें सब आता है, मेरे सब आता है, वो वाली कंडीशन नहीं है, सही है। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, लेकिन अगर हमारी यूथ इस तरह से सोचना शुरू हो जाए कि नहीं यार अब मुझे अपनी जॉब खुद क्रिएट करनी है, भाड़ में जाए मार्केट, भाड़ में जाए गवर्नमेंट, मुझे अपनी जॉब खुद ही क्रिएट करनी है, मेरा प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग होगा, मैं मार्केट एनालिसिस करके को लेकर आऊंगा और मैं बेचूंगा और वो बिकेगा, सही है, और मैं इसको इस तरह से एनालाइज करूंगा कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो यूजफुल हो, ऐसी बात नहीं कि मुझे ही सिर्फ अच्छी लग रही है, और यही बात हम शुरू से भी कर रहे हैं। मतलब अगर अब वो टाइम गया भाई, आपने गवर्नमेंट से मांगने की कोशिश की, आपको नहीं मिला, क्योंकि वो दे ही नहीं सकती ना आप उस टाइम। मैं मतलब फिर ये पॉलिटिकल डिबेट की तरफ नहीं जा रहा, जिस किस्म के टैक्सेस ये हमसे ले, जिस तरह काम करवाते हैं उसके बाद जिस किस्म के टैक्सेस हमें ले हमसे ये वसूल करते हैं, 40% तक टैक्सेस जा रहा होता, वो सही है, वो वेलफेयर के लिए, वो उतना टैक्स लेवल पाकिस्तान में नहीं होता, वो फिर एक पॉलिटिकल डिबेट है। लेकिन यूथ इस चीज सिनेरियो में बस यही कर सकती है कि वो खुद हॉस्पिटल चले जाए, या हॉस्पिटल में एक फ्री फैसिलिटी लगा दे अपने पैसों से, सर्वर बेस्ड, और वो वहां से वो डेटा को अपलोड करते रहे और डाउनलोड करते रहे, और उससे बना के वो बहुत कुछ कर सकती है। जैसे एक आइडिया है क्विकली, अगर टाइम है तो मैं शेयर कर दूं, फैजान।
यस।
हमारे यहाँ एक ये है रूटीन चेकअप का, सही है, रूटीन चेकअप होता है, आधे से ज्यादा लोग तो वैसे ही खांसते रहते हैं, बीमार हैं हमारे यहाँ तो।
ये वाला
नहीं, तो इसमें के अंदर डेटा जाता रहेगा, अपलोड रहेगा, और डॉक्टर भी फेथ रिलीजियसली उस चीज को चेक करता रहेगा, और उसको भी जांच नहीं करना पड़ेगा, उसने एक एआई का सॉफ्टवेयर जो है किसी स्टूडेंट से करवा के डाउनलोड किया हुआ होगा अपने पास, और उसको भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और वो अपने क्लाइंट से पैसा लेते, पैसे दोनों तरफ जा रहे हैं, ऐसा करना पड़ेगा
यार। इसमें मेरा छोटा सा कमेंट यह है कि ये बगैर गवर्नमेंट के जो है ना मुश्किल इस लिहाज हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ इथिकल इश्यूज आ जाते हैं फिर।
Exactly.
तो जो है पेशेंट का पर्सनल डाटा इस तरीके से ट्रेनिंग के लिए आप किसी को भी दे दो, वो क्लेम करे कि मैं एआई वाला हूं और वो डाटा को किसी और मकसद के लिए यूज कर ले, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये इस वजह से बड़े लेवल पे अगर इन्वॉल्व होगी गवर्नमेंट तो ये चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी।
नहीं, वो बात आपकी सही है सौरस, मैं लास्ट कमेंट कर रहा हूँ, उसके बाद जो है ना फैजान है। नहीं, गवर्नमेंट की बात 100% सही है, एथिकल इश्यूज की 100% सही है, हमारी हम जैसे बहुत एथिकल है, वो फौरन तक तो हाथ हटाया नहीं जाता, और आप उससे एथिक्स की बात है, और वो वैसे ही बहुत सारे ऐसे काम कर रही है, वो अपनी रिपोर्ट बराबर से जाके पढ़वा रही होती है, भाई जी जरा पढ़ के तो दिखाना, वो बराबर वाले अंकल जो होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता, किसी जमाने में पथरी हुई है वो कैंसर का इलाज कर रहे हैं, तो ऐसी आवाम के साथ कुछ किया जा सकता है भाई।
तो मैं यहाँ पर अपने कुछ फाइनल जो है वो एनालिसिस देता हूँ, और फिर इसको वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं। अब मार ने बात की बहुत अच्छी, सबसे पहले तो उस पर आ जाते हैं ना, जो इनिशियल क्वेश्चन था मेरा कि वर्क मतलब क्या इन्वायरमेंट मार ने फेस किया, तो कोरिया के अंदर तो काफ़ी फास्ट है, और क्या बोलते हैं, हर कोई वर्कहोलिक काइंड ऑफ पर्सन है, लेकिन यहाँ पर आके जो, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी कुछ इसी तरह का ही है, पाकिस्तान में ये कि थोड़ा सा जो है वो लिफ्टिंग वगैरह हो जाती है, लेकिन कोरिया के अंदर ऑफकोर्स क्योंकि उनका कोर कॉम्पिटेंस के ऊपर ही इवेल्यूएशन होती होगी तभी वो इतना आगे हैं, सही है। तो सबसे मजा यहाँ पर आता है जब आप यूरोप में आते हैं ना, फिर आपको पता चलता है जिंदगी क्या है, सही है, लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस होती क्या है, मतलब 5 बजे के बाद आपने ये पेन गिराया, चल मेरा भाई, कोई आपको रोक नहीं सकता, सही है, कोई आपको नहीं बोलेगा, आपकी अपनी टाइम लाइन होगी, कोई आपको क्यों भी नहीं कर सकता, सही है, यहाँ पर आपका पूरा वर्क लाइफ बैलेंस है, और वो आपको इनकरेज करेंगे, आप छुट्टी नहीं करो, आपको बोलेंगे छुट्टी करो भाई, आपकी 41 छुट्टियां रहती हैं इस साल में, जाओ घूमो फिरो, सही, तो एंजॉय करो। तो ये एक वर्क लाइफ बैलेंस मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है प्रोडक्टिविटी के लिए, सही। तो ये इस पॉइंट में मेरे बात होगी। दूसरी जो मार ने बात की और तुमने भी बात की शहरी के हॉस्पिटल्स का डेटा और वो पेशेंट जाता है, डेटा प्रोटेक्शन का बहुत ज़्यादा इशू है, और लाइक फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर जो कोरोना की एप्लीकेशन बनाई है इन लोगों ने कोरोना की वार्निंग देने के लिए, वो आपको अपडेट इमीजिएटली अपडेट नहीं करती कि आप किसी के साथ जो है वो कॉन्टेक्ट हुआ है जिसको कोरोना हो चुका है, वो भी आर्टिफिशियल बेस्ड इंटेलिजेंस, मतलब जो भी उसने एल्गोरिथम बनाया हुआ है अपना, वो आपको एक दिन बाद अपडेट करती है, और आपको ये नहीं पता चलता कि किस बंदे को हुआ है, ताकि आप डिस्क्रिमिनेट ना कर सकें उस बंदे को। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, और यूरोप में तो इसके ऊपर भाई बहुत ज़्यादा, इवन मैं आप एग्जाम्पल दूंगा, हमने एक क्या बोलते हैं, एक ग्लव बनाया जिसके अंदर हम एनालिटिक्स जनरेट कर रहे थे यूजिंग एक्सेलेरोमीटर्स। एक्सेलेरोमीटर ये होता है कि वो आपकी पोजीशनिंग और आपकी फोर्स को जो है वो इंपैक्ट को चेक करेगा, तो उसके अंदर भी हमें डेटा प्रोटेक्शन का ख्याल रखना पड़ा था कि अलग अलग बंदे का अलग अलग तरीका हो सकता है पंच मारने का, सही है, तो वो उससे डिकोड ना हो जाए कि ये बंदा है, तो उसके अंदर भी हमें इतनी डेटा प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें करनी पड़ी थी। तो ये एक फील्ड है जिसके अंदर गवर्नमेंट की सपोर्ट होना ज़रूरी है। बाकी ये है कि अगर नॉर्मली देखा जाए, अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डेटा के मुकाबले में ना केयर नहीं करता तो क्या हो सकता है कि बहुत इजीली हमारे पास जो है बहुत अच्छे अच्छे एआई के एल्गोरिथम बन सकते हैं जिसके जरिए से हम अपनी जो एटलीस्ट हेल्थ सेक्टर को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें जो हैं वो ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग हेल्थ सेक्टर से नहीं है, जैसे आप अमार तो हमारे पास जो है वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर है तो इसको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी हॉस्पिटल की, बाकी लोगों को नहीं पता होंगी। तो यहाँ पर कुछ फील्ड्स मेंशन करना चाहूँगा। सही, ऑटोनोमस कार इस वक्त जो है वो इमर्जिंग इंडस्ट्री है। सही है, और सब नाम सुनते हैं भाई सेल्फ ड्राइविंग कार आ रही है। टोटली मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितने भी सेंसर्स लगे हुए सब ट्रेन हुए हैं किस रोड पे चलना है, किस लाइन में चलना है, किस साइड पे चलना है। सही है, कौन डिस्टिंग्विश किस तरीके से करना है कि साइकिल आ रही है, कौन सी कार है, ट्रक तो नहीं है मेरे आगे। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम ही जो है वो संभाल रहे होते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर बायोमेडिकल की एग्जाम्पल बहुत अच्छी जो है मारने दी। उसके अलावा हमारे पास मशीन लर्निंग कम्युनिकेशन के अंदर लग सकती है। मैं खुद कम्युनिकेशन जो है वो मेरी मास्टर्स है उसमें, तो कम्युनिकेशन के अंदर ये होता है कि आपके पास इतनी नॉइज़ है आपके स्पेक्ट्रम के अंदर, आप हर कोई हर आप अपने घर में देख लो, आप अपनी कम्युनिटी में देख लो कितने राउटर्स लगे हुए और हर राउटर एक नॉइज़ जनरेट कर रहा है, तो उससे आपका सिग्नल जो है वो क्या बोलते हैं अटेनुएट हो जाता है, और अटेनुएशन के बाद जो है आप सिग्नल को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब कैच नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम्स हैं जो कि उस नॉइज़ फ्लोर के अंदर से जो है आपका सिग्नल कैच करके ले आते हैं। तो ये भी एक एप्लीकेशन है जो लोग सुन रहे हैं वो लोग इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो है एडवर्टाइजमेंट,
हमारी भी तो कंपनी की मशहूरी कर दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम में भी बहुत यूज होती है भाई,
क्वांटम के अंदर भी है, और न्यूमरस फील्ड मतलब जिसमें मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं इस चीज के अंदर कि अगर एक यंग ग्रेजुएट और जो लोग अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डिसाइड कर रहे हैं जरा सी भी इनोवेशन कर दें, इनोवेशन भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आइडिया उठाकर रेप्लिकेट भी कर दें तो उसके लिए वो एक अच्छा स्टार्टअप या वैल्यू जनरेट कर सकते हैं अगर इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री देखा जाए तो। और मैं आखिर में जो बात करूंगा वो एडवर्टाइजमेंट की करूंगा, क्योंकि ये बहुत स्पूकी सी चीज होती है कि आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो और वो कल आपके सामने आ गई, कल आपके पेट में दर्द हुआ और आपको वो मंजन दिखाना शुरू कर दिया उसने। यार लिटरली ऐसा हुआ है कि मेरे दोस्त के लैपटॉप पे पानी गिरा है, सही है और उसको लैपटॉप के एड्स आने शुरू हो गए। तो ये क्या है, ये मार्केटिंग और ये टेक्टिक्स है कि मार्केट किस तरीके से टारगेट करनी है, तो रेवेन्यू जनरेशन कितने ऊपर लेके जाया जा सकता है। तो मतलब ये तो हमने बिल्कुल बेसिक डिस्कशन की आज के बेसिकली मशीन लर्निंग होती क्या, इंशाल्लाह अमार जो है हमारे साथ आगे भी होंगे और हम थोड़ा डीप डिस्कशन भी करेंगे इनकी जो है अपनी रिसर्च के ऊपर डिस्कशन करेंगे जब ये अपना जब बड़े आदमी बन जाएंगे, डॉक्टर लग जाएगा इनके साथ। तो अमार कुछ फाइनल रिमार्क्स अगर ऐड करना चाहो और शेरी आप भी बारी बारी।
यार नीत अगेन थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने बुलाया, बहुत मजा आया डिस्कशन करके और मुझे भी लगता है कि शायद इसका एक और पार्ट होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम डिस्कस नहीं कर सके इतने शॉर्ट टाइम में। ये इथिकल इश्यूज जो एआई के हैं ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें तो पूरी एक एपिसोड सिर्फ इसके ऊपर हो सकती है। तो ये लेकिन बहुत मजा आया और बस आप लोगों को ये बोलूंगा कि कीप इट अप, कि आपने इनिशिएटिव लेके चले हो तो बस इस पर लगे रहो तो इंशाल्लाह इसके रिजल्ट आपको आना जो है ना मिलना शुरू हो जाएंगे।
थैंक्स अ लॉट शेरी।
अच्छा अमार भाई फर्स्ट बहुत शुक्रिया टाइम के लिए, और आज तो टाइम का पता ही नहीं लगा, ऐसे तो वैसे कभी भी नहीं पता लगता टाइमर लगाना कि नहीं भाई अब खत्म करिए। तो जस्ट मैं क्विक मार्क्स ऐड कर रहा हूँ कि एथिकल इशू है, कंसेंट का ताल्लुक इसी चीज से होता है कि अगर वो मेडिकल एप्लीकेशन पे कोई भी यूनिक एप्लीकेशन आना चाह रहा है यंगस्टर, वो उसमें कंसेंट का एक पोर्शन ऐड कर सकता है, फिर वो एथिकल सर्च कर ले, हम उस पर पॉडकास्ट कर भी लेंगे। लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए, और अब यही है कि यार हमें ऐप सर्च करनी है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फैजान बार बार चीज करता है कि रेप्लिकेट करना है, प्रॉपर सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और बिल्कुल की तरफ अब नहीं देखना, अब खुद करना है, बस यही मेरा पॉइंट था।
जबरदस्त, तो मार थैंक यू सो मच, मैं दोबारा तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा कि तुम आए, टाइम निकाला, क्योंकि पीएचडी करते वक्त टाइम निकालना काफी मुश्किल होता है ऐसा मुझे लगता है और उम्मीद है कि सुनने वालों को सबको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और अगर एक भी बंदा इससे मोटिवेशन ले सकता है तो समझेंगे कि ये हमारा जो है काम पूरा हो गया। तो फिर अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे आप लोगों से दोबारा, तो इंशाल्लाह दिस इज द शॉर्ट स्टोरी, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।
ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।